जैसे कि तरतीब वाजिब है और नमाज की तरतीब यह है कि चार रकात वाली नमाज में दो रकात के बाद कादा किया जाता है यानी बैठा जाता है। चार रकात वाली नमाज में हर दो रकात के बाद बैठा जाता है और वो बैठना वाजिब है, इसमें तहियात भी पढ़ा जाता है। तो वाजिब का मसला यह है कि अगर वाजिब छूट जाए तो आखिर में सजदा साहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। इसमें याद रखने की बात यह है कि अगर कोई आदमी दो रकात वाली नमाज में उसको बैठना था, चार रकात वाली नमाज में उसको बैठना था, तो वो बैठने के बजाय खड़ा हो गया। अब अगर उसको याद भी आ जाए तो बैठे नहीं बल्कि खड़ा ही रहे और अपनी नमाज को जारी रखे, क्योंकि बाज़े लोग फिर जब खड़े होने के बाद फिर बैठ जाते हैं। अब बैठना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब वो बैठना वाजिब था, खड़ा होना फर्ज था, अब वो फर्ज की तरफ चला गया, अब बैठे नहीं बल्कि अपना सफर जारी रखें और नमाज को मुकम्मल करें, आखिर में सजदा साफ कर लें, इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। और नमाज में ये जो सजदा साहब है, ये समझना कि इसको करने से नमाज नाकिस हो जाएगी, बाज़े लोग ये समझते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नमाज बिल्कुल कामिल है, नमाज बिल्कुल कामिल है, क्योंकि नमाज नाकिस होती है किसी सुन्नत को छोड़ने से, किसी मसले को छोड़ने से। जब कोई मसला ही नहीं छोड़ा, तो नमाज नाकिस कैसे? और फिर ये तरीका खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत ने बताया है। ये तरीका खुद साहिब शरीयत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो फिर नफ्स तक की क्या बात है? इसलिए ये मसला भी कि नमाज के वाजिबात को सीखे कि क्या चीज वाजिब है। जैसे मसलन तरतीब वाजिब है, जिस तरतीब से हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि खड़े होना, फिर रुकू करना, फिर सीधा खड़े होना, फिर एक सजदा करना, फिर दूसरा सजदा करना, फिर खड़े हो जाना, इसी तरह दूसरी रकात करना, अलबत्ता दूसरी रकात के दूसरे सजदे के बाद बैठ जाना, ये तरतीब कहलाती है। अगर इस तरतीब के आगे पीछे हो गया तो फिर सजदा साहब होता है। लिहाजा अगर कभी गलती ऐसी हो जाए कि एक सजदा करके भी खड़ा हो जाए तो भी नमाज जारी रखे, फिर भी छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ा। अगली रकात में तीन सजदे कर ले, आखिर में सजदा साहब कर ले, तो उसकी नमाज सही है, इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। हासिल यह हुआ कि नमाज के मसाइल सीखे, नमाज की बातें सीखे, मसाइल मालूम होंगे तो नमाज बिल्कुल, क्योंकि जिस जो आदमी मसाइल सीखेगा, जब उसको मसाइल का इल्म हो जाएगा तो उसकी नमाज का अजर भी बढ़ जाएगा। बगैर गलती के भी जो नमाज उसकी है उसका अजर भी, जिस आदमी को मसला मालूम होता है उसकी नमाज का अजर ज्यादा होता है। इसलिए एक मसला यह भी है कि किसी आलिम रब्बानी यानी ऐसा शख्स जो कि इल्म रखता हो, गुनाहों से बचता हो, जिसके अखलाक अच्छे हों और जिसका दीन पुख्ता हो, ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना ऐसा है जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना। इतना बड़ा ही बात, और ये वो बात है जो सबके सब किताबों में लिखी हुई है, वो बात है जो सबके सब लिखी हुई है। इतनी बड़ी अजर की थी दादा, जिस शख्स को मसाइल मालूम होते हैं उसकी नमाज का, उसके इबादत का अजर भी ज्यादा होता है, ये भी आ रहा है। और जो मैल जाहिल होता है, मसाइल सीखता नहीं है, तवज्जो नहीं देता, पूछता नहीं है, तो उसकी नमाज का अजर भी कम होता है। जो आलिम को अजर मिलता है वो चीज ही कुछ और, इसलिए मसाइल को सीखने का एहतमाम होना चाहिए। ताकि नमाज में कभी कोई ऐसी भूल चूक हो जाए तो जिसको मसाइल मालूम होंगे वो कहीं और चौक पर भी चल जाएगा, फिर घूम कर दोबारा सही वाले चौक पे आ जाएगा। अगर चूक से कहीं किसी और चौक पे चला जाएगा तो घूम कर सही चौक पे आ जाएगा दोबारा, क्योंकि मसाइल मालूम होते हैं। अल्लाह ताला इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा, और मसाइल को सीखना बड़ी अजर की बात है। मसला खुद सीखना यानी इल्म सीखना खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, और मसाइल का मालूम हो जाना ये खुद एक बहुत बड़ी अजर का और सवाब का जरिया है। अब सिखा लेना तो भी बहुत बड़ी इबादत है, मसाइल को सिखाना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला अपने कर्म से हम सब पर अपना फर्ज फरमाए। वाह।